पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र मॉडल को हटाने का आदेश देता है और मयंक दिशा को रिजाइन लेटर पर साइन करने के लिए बुलाता है। दिशा होटल रंगमहल जाती है, रूही जैसे मदद लेती है और उसे थप्पड़ मार देती है और देवांश दिशा को प्रपोज करता है। अब आगे रुद्र अमन को रूही को ऑफिस बुलाने के लिए कहता है। देवांश से दिशा कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो उसे उस तरह से नहीं देखती और उसे संदेह होता है कि इंदौर में कमरे की व्यवस्था देवांश ने ही की थी। रूही जैसे माफ़ी मांगने के तरीके खोज रही है। अब आगे रुद्र अमन को रूही को ऑफिस बुलाने के लिए कहता है। देवांश से दिशा कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो उसे उस तरह से नहीं देखती और उसे संदेह होता है कि इंदौर में कमरे की व्यवस्था देवांश ने ही की थी। रूही जिसे समझ परी को खुद से कहती है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 150। अब आगे कॉलेज में रूही के ये बोलने के बाद कि वे जय को सॉरी कैसे बोले, इस बात को सुन परी बोली, सिंपल है, या तो तू डायरेक्ट उसके पास जाकर सॉरी बोल दे या फिर उसके लिए गिफ्ट लेकर उसे देकर उसे सॉरी बोल दे, क्योंकि लड़का हो या लड़की दोनों को गिफ्ट पसंद होते हैं और जब कोई उसे मनाने के लिए इतने प्यार से गिफ्ट भी लेकर आए तो वे इंसान चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाता। परी की बात रूही को भी काफी सही लगती है क्योंकि जय ने आज उसकी जान बचाई थी तो वे उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तो ले ही सकती थी। वैसे भी अगर आज जय उसे नहीं बचाता तो उसे आज कितनी चोट लगी होती, वे इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वे इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी एक बॉडीगार्ड उसके पास आ अपना सर झुका बिना रूही की तरफ देखे ही बोला, मैडम बॉस ने आपको अभी अपने ऑफिस बुलाया है, आप प्लीज हमारे साथ बॉस के ऑफिस चलिए। उस बॉडीगार्ड की बात जैसे ही रूही के कानों में जाती है वैसे ही रूही का शरीर डर के मारे पीला पड़ जाता है। साथ ही साथ उसे रुद्र की सारी हरकतें याद आने लगती है जो जो रुद्र ही कल उसके साथ ऑफिस में किया था। इस बात को याद करते ही रूही के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वे खुद से अपने मन में ही बोली, कहीं उन्हें ये पता तो नहीं चल गया कि वे आज जय के करीब गई थीं। इस बात को सोच रूही के चेहरे पर डर नजर आने लगता है जिस वजह से वे खुद से ही कहती हैं, अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो मैं किसी भी हाल में उनके ऑफिस नहीं जाऊंगी क्योंकि उन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये बात वे बिल्कुल भी नहीं समझेंगे और सीधा मुझे सजा देने लगेंगे। मैं उनके ऑफिस नहीं जा सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इतना बोल वे कुछ सोचने लगती है। वहीं बॉडीगार्ड जब देखता है कि रूही कोई जवाब नहीं दे रही है तो वे दोबारा बोला, मैडम आप जल्दी चलिए हमारे साथ क्योंकि बॉस ने आपको जल्द के जल्द वहां पर बुलाया है, अगर आप जल्दी नहीं गई तो बॉस गुस्सा हो जाएंगे। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर रूही अपनी सोच से बाहर आती है और उस बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए एक नकली मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है भैया आप चलिए, मैं बस एक मिनट में बाहर आती हूँ। रूही के इतने प्यार से बोलने से वे बॉडीगार्ड रूही की बात मान वहां से चला जाता है। वहीं उस बॉडीगार्ड को जाता हुआ देख रूही चैन की सांस लेते हुए परी और अर्जुन को देखते हुए बोली, देखो मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए, मैं उस शैतान के ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, मुझे अभी के अभी घर जाना है, इसलिए मुझे जल्दी से उन बॉडीगार्ड्स की नजरों से बचाकर घर ले चलो। रूही की बात सुनकर परी बोली, तुझे हम पागल दिख रहे हैं जो हम भाई से तुझे बचाए और भाई से दुश्मनी लेने का रिस्क लें, हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे, तू जा भाई के पास, क्या पता भाई को तुझसे कोई जरूरी काम हो। इतना बोल परी के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। वहीं परी को खुद पर हंसता हुआ देखकर रूही का मन कर रहा था कि वे उसे ही उसके शैतान भाई के पास छोड़कर आ जाए। उसे पता चल गया था कि ये लड़की उसकी फ्रेंड कम दुश्मन ज्यादा है और उसकी कोई भी मदद नहीं करने वाली है, जिसे समझ वे अर्जुन को देखते काफी प्यार से अपनी आंखों में मासूमियत लाते हुए बोली, अर्जुन तुम प्लीज मुझे घर ले चलो, इसके बदले में तुम्हें अपनी तरफ से ट्रिक दूंगी, तुम जहां बोलोगे वहां दूंगी, लेकिन प्लीज मेरी मदद कर दो। रूही के मुंह से ट्रिक वाली बात सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक आ जाती है और वे रूही को देखते हुए बोला, ठीक है मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन पक्का तो ट्रिक तो देगी ना, मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है। अर्जुन की बात सुनकर रूही तुरंत बोली, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, अगर तू बोले तो मैं तुझे स्टैम्प पेपर पर साइन करके दे दूं। रूही की बात सुनकर अर्जुन हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं रहने दे, इतना विश्वास तो मैं तुझ पर कर ही सकता हूँ, आ चल मैं तुझे पीछे वाले रास्ते से लेकर चलता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर रूही खुश हो जाती है और तुरंत अर्जुन के साथ जाने लगती है। वहीं परी गुस्से में अर्जुन को देखते हुए बोली, लालची कहीं का, इतना अमीर होने के बाद भी एक छोटी सी ट्रिक के नाम पर खुश हो जाता है। इतना बोल वे गुस्से में अर्जुन को दोबारा देखती है और वे भी रूही और अर्जुन के साथ उठ उसके पीछे पीछे जाने लगती है क्योंकि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। परी अर्जुन और रूही जैसे ही पीछे के गेट से जाने के लिए आगे बढ़ते हैं वैसे ही उसकी रुद्र के बॉडीगार्ड पर पड़ती है जो गेट के पीछे खड़े होकर भी पहरा दे रहे थे, जिसे देख तीनों एक किनारे में छुप जाते हैं और उस बॉडीगार्ड को देखते हुए अर्जुन बोला, ओ नो भाई तो यहाँ पर भी अपने बॉडीगार्ड्स को खड़ा करके रखते हुए हैं, अब क्या किया जाए, कैसे इन बॉडीगार्ड की नजरों से बचकर कहीं जाया जाए। अर्जुन की बात सुनकर परी कुछ सोचते हुए कहती है, तू यहीं रुक मैं कुछ करती हूँ, फिर तुम दोनों मौका देखकर यहाँ से निकल जाना, उसके बाद मैं भी आ जाऊंगी। परी की बात सुनकर अर्जुन और रूही हाँ में अपना सर हिला देते हैं, जिसे देख परी तुरंत उस बॉडीगार्ड के पास जाती है और घुटनों के बल बैठ अपना सर नीचे लेकर रोने लगती है और हेल्प हेल्प कर चिल्लाने लगती है। परी की आवाज सुनकर उन दोनों बॉडीगार्ड का ध्यान परी की तरफ चला जाता है और वे परी के पास जाते हुए बोले, मैडम क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? वहीं परी जब देखती है कि बॉडीगार्ड्स का ध्यान उसकी तरफ है तो वे अपना नाटक जारी रखते हुए उस बॉडीगार्ड को अपनी बातों में उलझाने लगती है। वहीं रूही और अर्जुन जब देखते हैं कि उन बॉडीगार्ड का ध्यान परी पर है तो वे दोनों तुरंत साइड से होते हुए वहां से निकल जाते हैं। वहीं परी जैसे ही देखती है कि परी और अर्जुन वहां से चले गए हैं तो वे परी भी उन बॉडीगार्ड्स को देख वहां से जाते हुए कहती हैं, कुछ नहीं भैया, अब मैं चलती हूँ, अब ठीक है मेरा पैर।
इतना बोल वे अपने धीमे कदमों से धीरे धीरे वहां से निकल जाती है। वहीं बॉडीगार्ड भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने काम में लग जाते हैं।